ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। नशा ये है नारायणी, मन भावन ये अव्यक्त वाणी। गीता है स्वयं ये भगवान की, दिन रात जिसे सिमरन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। लगन से बड़े इसका पान करूं, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का, अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का, बड़ी मौज से इसमें स्नान करूं, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा। बरसी है जो परमात्म बारिश, ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा। बरसी है जो परमात्म बारिश, निरंतर इसमें भीगता रहूं, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं।
ओम शांति। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर। दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभा ले किरण बन उतरा नयन में। साधना का हो बसेरा गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो प्रेम का संदेश लेकर। यज्ञ के मंत्र से ही विश्व को सामर्थ्य मिलेगा। दिव्य पावन मंत्र से ही सुप्त मन सरसिज खिलेगा। सब चले मिल यज्ञ बनकर शक्ति का संदेश लेकर। धर्म के प्रहरी बने हम मान संस्कृति का करे हम। ज्ञान की पावन ऋचा से योग का मंदिर रचे हम। अग्निपथ पर बढ़ चले हम, मुक्ति का संदेश लेकर क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति पर्व है, उत्सव है, फेस्टिवल है। सूर्य की अरुणिम विभाले किरण बन उतरा नयन में, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, ज्ञान का संदेश लेकर क्रांति का यह पर्व आया। क्रांति अर्थात परिवर्तन, क्रांति अर्थात नई संस्कृति, नई परंपरा, नई आदतें। इन आदतों को बदल लो, नहीं तो ये आदत कहां ले जाएगी? अदालत में। आज दो मुरलियां है, इन दोनों मुरलियों में बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर वाक्य कहे। एक बस्ती में आग लग गई, भीषण आग, भयंकर आग, और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई। फिर आग इतनी भीषण थी कि जितनी वो गाड़ियां आई, कोई भी उस आग में घुसने के लिए तैयार नहीं था। सारे ड्राइवर्स घबराए हुए थे क्योंकि आग बहुत भयंकर थी। और उतने में एक फायर ब्रिगेड सीधा उस जगह घुस जाती है जहां भीषण आग हो, और उसको देखकर बाकी फायर ब्रिगेड के जो ड्राइवर्स होते हैं उनको भी थोड़ी हिम्मत आती है और वो भी अंदर घुस जाते हैं और थोड़ी देर में आग को बुझा देते हैं। सब लोग सब पब्लिक बहुत प्रशंसा करती है, पर सारे ड्राइवर्स कहते हैं कि हमको हिम्मत दिलाने वाला तो वो व्यक्ति है जो सबसे पहले अपने ट्रक को लेकर उस आग में घुसा। महिमा उसकी होनी चाहिए, बख्शीश पुरस्कार उसको देना चाहिए। और उसको स्टेज पर बिठाते हैं और फिर उसको कहते हैं तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए? कहता है मुझे पुरस्कार ही देना है तो मेरा जो ट्रक है फायर ब्रिगेड, उसके ब्रेक फेल हो गए थे, बस वो ब्रेक लगा दो। ब्रेक अगर ना हो तो अधिकतर नुकसान ही होगा इस कहानी को छोड़कर। इसके लिए ब्राह्मण जीवन की जो गाड़ी है उसके लिए ब्रेक बहुत आवश्यक है, और उस ब्रेक को ही हम क्या कहते हैं? मर्यादा है, लक्ष्मण रेखा है। तो उस दिन सबको होमवर्क था 26 मर्यादा है, और सबने बहुत अच्छा अच्छा चिंतन किया है। किया तो है, पर जो वास्तविक मर्यादा है, जो विदेश के सेंटरों में फ्रंट में लगाई जाती है, जो भारत के जो विभिन्न सेंटर्स है वहां लगाई जाती है, कुछ लिखत में है, कुछ मर्यादाएं बुक्स में है, कुछ मुरलियों में है, वो सारी मर्यादाओं को कंपाइल करके एक जगह हमने एक बार बनाए थे सारी मर्यादाओं की लिस्ट, और अलग अलग सेंटरों पर क्लासेस के द्वारा उन मर्यादाओं को सुनाया था। ये मर्यादाएं है, इसमें दिव्य गुणों की लिस्ट नहीं आएगी। लोगों ने सारे दिव्य गुण डाल दिए, श्रीमत की लिस्ट नहीं है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस की लिस्ट है। और वो किसके लिए विशेष? सेंटर के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए विशेष। तो आज हम सबसे पहले तो ये दो मुरलियां तो देखनी ही है, परंतु उसके पहले इन मर्यादाओं को देखेंगे। टोटल 26 मर्यादाएं हैं, और आज जो दो मुरलियां है वो आप सबको ही होमवर्क दे रहे हैं। एक, हाँ दो मुरलियां है ना, अच्छा ओके ओके, चलो छूटेगा तो कुछ नहीं, एक तीन वाली रह गई ना, हाँ इसको कल ले लेंगे। तो इससे पहले कि मर्यादा ले, पहले इन दो मुरलियों को देख लेते, 5 और 11 वाली, मार्च की, 5 मार्च और 11 मार्च। तो एक टेक्निक है जो विश्व भर में सिखाई जाती है, समझाई जाती है, उसको कहते हैं फाइनमैन टेक्निक। इसलिए फाइनमैन टेक्निक क्या होती है, तो इसका हम डायरेक्ट इधर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ही करेंगे। एक माइक निकाल लो, एक्स्ट्रा माइक। तो फाइनमैन नाम का एक व्यक्ति था अमेरिका में, बहुत बड़ा फिजिसिस्ट, नोबेल पुरस्कार भी उसको मिला है, उसको द ग्रेट एक्सप्लेनर नाम से भी जाना जाता है। वो एक्सप्लेन बहुत अच्छा करता था हर चीज को। तो ये टेक्निक क्या कहती है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसको अगर समझना है, कोई भी चीज हो उसको अगर समझना है, जानना है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो स्टेप नंबर 1, पहले उसको पढ़ो या उसको लिखो, ठीक है, उसके बारे में। दूसरा, सोचो कि कोई एक 12 साल का बच्चा है जिसे आपको ये सब बातें समझानी है जो आपने पढ़ी है, इतनी सिंपल भाषा में उसको समझानी है कि उसको कुछ भी नहीं पता है, उसको समझाना है, या फिर ऐसे व्यक्ति को समझाना है जिसको उस कॉन्सेप्ट के बारे में जरा भी ज्ञान नहीं है। आपने साइंस का एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब वो कॉन्सेप्ट उस अज्ञानी व्यक्ति को समझाना है, या फिर कहीं कहीं लिखा है एक 12 साल का बच्चा है उसको समझाना है, या ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल ही अनपढ़ है, गवार है, उसे कुछ भी पता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ये बातें समझानी है, तो आप उसको समझाओ, ठीक है। स्टेप नंबर 3, फिर देखो कि आपके समझाने में और जो ओरिजिनल लिटरेचर था उसमें क्या गैप्स रह गई, और 4, वापस उस किताब की तरफ जाओ और पढ़ो कि क्या बचा समझाने में, कौन सी चीज रह गई थी। जैसे अब मुरली ले लेते हैं, भट्टी की अलौकिक छाप, या फिर ये दूसरी कुमारों के लिए मुरली है, 49 वाली, 11। तो सभी मुरली खोलेंगे, कुमारों वाली मुरली, भट्टू एक तो 11-3 वाली, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक पैराग्राफ ले लेते हैं, चलो सेकंड पैराग्राफ ले लो, कुमारों को सदा, माइक ले लो अरविंद भाई, वो पढ़ो, कुमारों को सदा प्योर और सतोगुनी रहने का यादगार कौन सा है।
ओम शांति।
पेज नंबर 50, कुमारों को सदा
प्योर और सतोगुणी रहने का यादगार कौन सा है। मालूम है सनंत कुमार, उन्हों की विशेषता क्या दिखाते हैं, उन्हों को सदैव छोटा कुमार रूप ही दिखाते हैं। कहते हैं उन्हों की पांच सदैव पांच वर्ष की आयु रहती है। यह प्योरिटी का गायन है। जैसे पांच वर्ष का छोटा बच्चा बिल्कुल प्योर रहता है ना, संबंधों के आकर्षण से दूर रहता है, बल्कि कितना भी लौकिक परिवार हो लेकिन स्थिति ऐसी हो जैसे छोटा बच्चा प्योर होता है, वैसे ही प्योरिटी का यह यादगार है। कुमार अर्थात पवित्र अवस्था, उसमें भी सिर्फ एक नहीं संगठन दिखलाया है। दृष्टांत में तो थोड़े ही दिखाए जाते हैं, तो यह आप लोगों का संगठन प्योरिटी का यादगार है। ऐसी प्योरिटी होती है जिसमें अपवित्रता का संकल्प व अनुभव ही नहीं हो। ऐसी स्थिति यादगार समान बनाकर जानी है। भक्ति में इसलिए आए होना, बिल्कुल इस दुनिया की बातों से संबंध से न्यारे बनेंगे, तब दरी परिवार के बाप दादा के और सारी दुनिया के प्यारे बनेंगे। वैसे भी कोई संबंधियों से जब न्यारे हो जाते हैं, लौकिक रीति भी अलग हो जाते हैं, तो न्यारे होने के बाद ज्यादा प्यारे होते हैं। और अगर उन्हों के साथ रहते हैं व उन्हों के संबंध के लगाव में होते हैं तो इतने प्यारे नहीं होते हैं, वह हुआ लौकिक। लेकिन यहाँ न्यारा बनना है ज्ञान सहित, सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना है। मन का लगाव ना हो, जितना जितना न्यारा बनेंगे उतना उतना प्यारा अवश्य बनेंगे। जब अपनी देह से भी न्यारे हो जाते हो तो वह न्यारेपन की अवस्था अपने आप को भी प्यारी लगती है। ऐसा अनुभव कब किया है? जब अपने न्यारेपन की अवस्था अपने को भी प्यारी लगती है तो लगाव से न्यारी अवस्था प्यारी नहीं लगेगी।
बस रुक जाएं, ठीक है, एक बार अभी इसको मन में पढ़ेंगे सभी। पेज नंबर 50, मुरली 11-3। स्टॉप, ठीक है, चलो अभी माइक दे दो। तो सबने स्टेप वन कर ली है, इसको हमने पढ़ा, तो अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सुशील भाई और कमलेश भाई आप यहाँ आ जाओ, इधर बैठ जाओ। तो ये 12 साल का छोटा कुमार है, ठीक है, लड़का है। अब आपने जो पढ़ा है इसको कुछ भी पता नहीं है, ना ब्रह्मा कुमार इसका नाम सुना है ना कुछ सुना है। इसको अभी एकदम सिंपलेस्ट भाषा में सिंपलेस्ट भाषा में अभी जो पढ़ा है इसको समझाना है। तो ये सिनेरियो वन है कि जिसमें ये बच्चा है कि जिसको आपको जो ज्ञान सुना है इतनी सिंपल भाषा में कि आपको बहुत सारे वाक्यों को बदलना पड़ेगा, शब्दों को बदलना पड़ेगा। चाहे तो आप एक मिनट और रिवाइज कर लो या सोच लो क्या समझाना है। एक बार थोड़ा चिंतन कर लो कि अभी बच्चा है छोटा, तो इसको समझाना है ये जो भी पढ़ा है। स्टार्ट।
ओम शांति। हाय कम्मू।
गुड मॉर्निंग।
कैसे हो आप? बड़े कोमल लग रहे हो। आपको बताएं एक अवस्था किसकी होती है ऐसी कोमल अवस्था? कोमल अवस्था बड़ी प्योर अवस्था होती है, पवित्र। तो इसकी कहानी है, सुननी है कहानी आपको? जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सब लोग महात्मा कहते हैं, महात्मा अर्थात पवित्र। एक सनत कुमार है, उसकी उम्र है, उम्र से बड़ा होता है लेकिन वो हमेशा पवित्र रहता है। इसलिए जब भी लोग उसको देखते हैं तो उसकी अवस्था बच्चों जैसी लगती है, अर्थात मन से भी साफ, अंदर बाहर बिल्कुल साफ, इसलिए बहुत प्यारा लगता है सबको। उसको कहते हैं सनत कुमार, वो सदा प्योर होते हैं, उनको कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करता है, बल्कि वो सबको आकर्षित करते हैं। तो आपको हमेशा ऐसे ही बनना है, वो हमेशा न्यारे भी रहते हैं, सबको प्यारे लगते हैं, सदा प्योर होते हैं। वो प्योर परमात्मा को पवित्रता का सागर कहते हैं, तो परमात्मा समान होते हैं वो, इसलिए उनका पूजन होता है, गायन होता है, उनकी अटैचमेंट नहीं होती किसी से भी, बल्कि वो सबको आकर्षित करते हैं, उनको देख के परमात्मा की याद आती है, वो सदा मुस्कुराते ही रहते हैं, खुश रहते हैं, और वो सबको प्यारे लगते हैं। भगवान को भी प्यारे, परिवार को भी प्यारे लगते हैं, भक्तों को भी प्यारे लगते हैं, कहीं उनकी आंख नहीं डूबती है। तो ऐसा आपको बनना है, आप सोच बोल ही रहे
उनको शायद समझ ही नहीं रहा है आप क्या बातें कर रहे हो, ऊपर से जा रहा है,
तो लगता है कहीं और ही जा रहा है।
आपको समझ में आया कुछ? अगर
समझ में आया
प्रॉब्लम है तो कुछ
समझ में आया, अब दुश्मन ये मना कर देगा वो। आया, अच्छा लगा आपको?
चलो ये सिनेरियो वन, ये तो एकदम छोटा बच्चा था, अभी सिनेरियो टू, ये बड़ा व्यक्ति है पर उसे कुछ भी पता नहीं है, अब उसे आपको ये समझाना है। स्टार्ट। अभी ये बड़ा व्यक्ति है पर उसे कुछ भी पता नहीं है, तो उसे आपको प्यूरिटी की बातें समझानी है जो यहाँ पे पढ़ी है आपने। अच्छा एक मिनट सोच लो, टाइम दे दो, चलो एक मिनट सोच लो। और वो जो सामने वाला व्यक्ति है ना, एकदम सोचो वो गांव का है, उसे कुछ भी नहीं पता, एकदम ही गांव से आया है, आज ही पहुंचा है इधर, अनपढ़ गवार है उसको, अभी बेचारा वो खेती बाड़ी जानता है, उसके सिवा उसको कुछ पता नहीं, एकदम इनोसेंट। दो तीन पॉइंट सोच लो जिसका विस्तार करना है, और जो गांव से आया है आप अपने प्रश्नों के बारे में सोच लो। प्यूरिटी जैसा कठिन टॉपिक एक अनपढ़ गवार व्यक्ति को समझाना है। स्टार्ट।
ओम शांति।
मैंने ये शब्द कई बार सुना भी है, और ये आपके ओम शांति वाले बाहर लिखा होता है, पवित्र बनो, योगी बनो। ये पवित्र शब्द का अर्थ मैं आज तक समझ नहीं पाया। पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल पढ़ा तो है, सुना भी है, लेकिन ये पवित्र शब्द का अर्थ मुझे
पढ़ा है। अनपढ़ गवार। सुना है, सुना है,
सुना है।
तो
पवित्रता शब्द का अर्थ क्या होता है?
सुना है।
आप भगवान को याद करते हो ना? क्यों याद करते हो? भगवान को याद करते हो ना? भगवान कौन है?
वो तो हमारा
मातृता है। वो कहाँ रहता है?
ऊपर रहते हैं आसमान।
क्यों ऊपर रहता है?
पता नहीं।
हाँ, पवित्रता जो होती है, जो आपने पूछा, तो भगवान परम पवित्र आत्मा है। पवित्रता अर्थात मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख ना देना, किसी के बारे में बुरा ना सोचना, और किसी के प्रति घृणा नफरत नहीं करना। इसलिए मंदिरों में देवताओं की पूजा होती है, क्योंकि देवते भी भगवान समान है, वो भी पवित्र है। और पवित्रता अर्थात स्वच्छता, जो स्वच्छ रहते हैं मन से भी, सच्चाई सफाई, झूठ छल कपट इससे परे, ये सब पवित्रता है। कर्म करते हुए भी पवित्रता अर्थात जिस कर्म से दूसरों को मर्यादा पूर्वक सुख मिले उसको भी पवित्रता कहेंगे। तो आपकी ऐसी पवित्रता है? लग तो रहा है।
हाँ स्वच्छता तो पता है, जैसे आपने बताया पवित्रता, तो कहते हैं कि भगवान जब आने का टाइम होता है सुबह या शाम को, हम घर में और आंगन में सफाई करते हैं, दिया जलाते हैं, उसका आह्वान तो करते हैं, लेकिन वो तो भगवान तो दिखते नहीं,
क्योंकि हम बाहर की सफाई तो करते हैं, जो मन का आंगन है उसमें बहुत कूड़ा कचड़ा पड़ा हुआ है, उसकी सफाई करनी पड़ेगी, उसमें व्यर्थ विचार, नेगेटिव विचार, अर्थात देश से संबंधित विचार, दूसरों को कष्ट देने के विचार या शल कपट करने के विचार, ये मन के आंगन में बहुत सारा कूड़ा कीचड़ा पड़ा हुआ है। जब तक वहां स्वच्छता नहीं होगी तो प्योरिटी नहीं ठहर सकेगी। तो जब हम अपने मन को साफ करेंगे तो पवित्रता का सागर की उसका प्यार भी बरसेगा हमारे पर, तो हमको असली पवित्रता का स्वाद पता चलेगा कितनी अच्छी होती है वो।
डन, तो इसको कहा जाता है। अभी वापस मुरली पढ़ो, आप चले जाओ, कि उसमें कौन कौन सी पॉइंट बच गई बताने की। तो दिस स्टेप नंबर 3 कि जिसमें हम देखेंगे हमारे समझाने में और जो टेक्स्ट था जो समझा रहे थे उसमें क्या गैप है, और फिर वापस जाके एक बार रिवाइज करेंगे उसको कि हमने ये पॉइंट्स छोड़ दी। तो आपने अभी कौन कौन सी पॉइंट्स छोड़ दी? हाँ, वो न्यारा शब्द शायद लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि न्यारा शब्द ये विश्व के लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर में उस रीति से कभी भी प्रयोग नहीं किया गया जिस तरह से भगवान ने किया है। एक तो ये, और पब्लिक बताएंगे अभी समझाने में क्या क्या छूट गया, पब्लिक क्या क्या छूट गया, संबंध में लगाव ना हो, पहले बार में बताया था पर जो दूसरा जो गांव वाला आया था उसको नहीं समझाया बस, और रियल पवित्रता क्या थी, इसमें जो था उसमें से कौन सा छूट गया था। कुमारों को सदा प्योर और सत्वगुणी रहने का यादगार मालूम है कौन सा है, सनंत कुमार। वैसे ये चार कुमारों का सत्य शास्त्रों में गायन है, सनत कुमार, सनंदन, सनातन, सनक। सनक अर्थात पुराना, सनातन अर्थात अनादि, सनंदन अर्थात जो सदा खुश है, और एक होता है सनत, सनत अर्थात सदा जवान, एवर यूथ। सनत, सनातन, सनंदन, सनक, दीज आर कॉल्ड 4 कुमार्स। ये ब्रह्मा के पुत्र है, मानस पुत्र 4, जो कि ब्रह्मचर्य व्रत का जिन्होंने व्रत ले लिया, और सारी सृष्टि पर इनकी उम्र 5 साल से ऊपर कभी जाती नहीं, 5 साल के ही रहते ये सदैव, ये 4 कुमार। और शास्त्रों में तो दिखाए थे कि ब्रह्मा की इच्छा नहीं थी, ब्रह्मा की इच्छा विरुद्ध इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, ऐसा उसमें गायन है। और फिर इनमें इतनी पावर है कि अगर इनका कहीं अपमान हो गया और इन्होंने कुछ कह दिया तो फिर वो विष्णु हो या कोई भी हो, सबको धरती पर उतरना पड़ता है कोई इनके रास्ते में कोई भी नहीं आ सकते, ये इतने पावरफुल कुमार है। हाँ, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, इतने पावरफुल कुमार है। कुमारों को सदा प्योर और सत्वगुणी रहने का यादगार कौन सा मालूम है, संत कुमार। उन्हों की विशेषता क्या दिखाते, उन्हें को सदैव छोटा कुमार रूप में दिखाते, कहते हैं ना उन्हों की सदैव 5 वर्ष की आयु, प्योरिटी का गायन है। जैसे 5 वर्ष का छोटा बच्चा बिल्कुल प्योर रहता है, संबंध के आकर्षण से दूर रहता है, बल कितना भी लौकिक परिवार हो लेकिन स्थिति ऐसी होगी जैसे छोटा बच्चा प्योर होता है वैसे ही। तो इसमें पॉइंट्स क्या क्या थी, तो सबसे पहले पॉइंट्स थी सत्वगुणी, फिर प्योर, फिर शास्त्रों का एक एग्जाम्पल, तीसरा फिर उसके बाद में संबंधों की आकर्षण नहीं, फिर लौकिक परिवार हो लेकिन स्थिति ऐसी जैसे छोटा बच्चा प्यारा होता है वैसे ही प्यूरिटी का यादगार है, कुमार अर्थात पवित्र अवस्था। उसमें भी सिर्फ एक नहीं संगठन दिखाया, दृष्टांत में भी दिखाया संगठन क्यों भी करें, जिसमें अपवित्रता का संकल्प अनुभव ही नहीं हो। ये कितना अच्छा वाक्य है, अपवित्रता का संकल्प तो सुना था, अपवित्रता का संकल्प और अनुभव, ये पॉइंट मिस हो गई सुनाते हुए। हमें सारी पॉइंट्स कवर करनी है, हमको क्या एग्जामिन क्या करना है, जो हमने सुनाया और जो टेक्स्ट था, सुनाने को तो बहुत सारा सुना सकते हैं पर टेक्स्ट वाला कितना सुनाया। तो टेक्स्ट की क्या पॉइंट थी, अपवित्रता का संकल्प और अनुभव ना हो, यह है पवित्र अवस्था। उसके बाद में आगे क्या है, भट्टी में भी इसलिए आए हो बिल्कुल इस दुनिया की बातों से संबंध से न्यारे, तब दैवी परिवार के, बाप दादा के और सारी दुनिया के 3 चीजों के प्यारे बनोगे, ये परिवार, भगवान और संसार। ये पॉइंट भी मिस हो गया। ठीक है। वैसे भी कोई संबंधियों से जब न्यारे हो जाते हैं, लौकिक रीति भी अलग हो जाते हैं, तो न्यारे होने के बाद ज्यादा प्यारे होते अगर और अगर उन्हों के साथ रहते तो उन्हों के संबंध के लगाव में होते हो इतने प्यारे नहीं होते। वह हुआ लौकिक और अलौकिक। ये तो बोल दिया प्यारा न्यारा, ये हो गया कवर। जब अपनी देह से भी न्यारे हो जाते तो वह न्यारेपन की अवस्था अपने आप को भी प्यारी लगती है। ये मिस हुआ है, देह से भी न्यारापन। ठीक है, अब हमको चेकिंग क्या करनी है कि हमने जो समझाया और जो टेक्स्ट था उसमें कौन से गैप्स है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड फाइनमैन टेक्निक, फाइनमैन टेक्निक। फिर जिस दिन देह के लगा, हाँ फिर ये एक पॉइंट है, जिस दिन देह का लगा होता है उस दिन क्या होता है, न्यारापन नहीं होता है, फिर अपने को भी प्यारा नहीं लगते और फिर क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये था, ठीक है। तो ये पूरी मुरली की शुरुआत कुमारों से मुलाकात की है और जिसमें बाबा ने क्या कहा है, आदत के विषय में कहा है। क्या कहा है कि जैसे बुरी आदत हो जाती है वो भी अपने आप खींचती है, अगर ये आदत डाल दो फरिश्तेपन की, अव्यक्त स्थिति की, न्यारेपन की, प्यूरिटी की, तो क्या होगा, अदालत में नहीं जाना पड़ेगा। एक ये, जब इसको अपनी नेचर नेचुरल बना दोगे तो क्या होगा, नेचुरल कैलमिटीज होगी। राइमिंग जोड़ा है, ये दूसरी पॉइंट। फिर उसके बाद में वो एक उदाहरण दिया है सीता और रावण का, वो खिलौने वाला। फिर उसके बाद में ये चार कुमारों का उदाहरण। फिर उसके बाद में कहा भट्टी का आरंभ है और फिर क्या कहा, माया से इनोसेंट और ज्ञान से सेंट, माया से इनोसेंट ज्ञान से सेंट। ये हो गया एक पॉइंट। फिर उसके बाद में और एक लास्ट पॉइंट है एक जगह पर कि प्यूरिटी मतलब क्या, सिंप्लिसिटी और सिंप्लिसिटी और प्यूरिटी में रहने वाला ग्रुप। तो सिंपल जो होता है ना वो ब्यूटीफुल होता है, सिंप्लिसिटी की ड्रेस, सिर्फ ड्रेस को नहीं लेकिन सभी बातों की। और लास्ट में एक स्लोगन है, पहले करेंगे दिखाएंगे फिर कहेंगे, पहले करेंगे दिखाएंगे फिर करेंगे। तो ये मुरली यहां पूरी हुई। कल भी हमने देखा था मुरली का एक ओवरव्यू ले लिया, उसके प्रश्न पूछ लिए, फिर फास्ट उसको पढ़ लिया, पढ़ने के बाद किसी को सुनाया या समझाया। तो ये जो टेक्निक है इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी मुरली पढ़ने के बाद तुरंत सोचो ये मुझे एक ऐसे व्यक्ति को समझाना है जिसको कुछ भी पता नहीं है। तो उसमें कोई भी वो रूटीन वाले शब्द नहीं आएंगे, हमारे ज्ञान के जो शब्द है ना वो नहीं आने चाहिए। उस व्यक्ति को उसी हिंदी में समझा, क्योंकि ज्ञान की जो हिंदी है और लौकिक जो हिंदी संसार में बोली जाती है अलग अलग है। ऐसी हिंदी संसार में नहीं बोलते कि मेरे मन में संकल्प आ रहा है, ऐसा कोई बोलता है क्या, कभी नहीं बोलता है। वहां संकल्प अर्थात प्रतिज्ञा। वहां की संसार की हिंदी ही अलग है, हमारी हिंदी अलग हिंदी है कि न्यारेपन, तुम बहुत न्यारे रहते हो, ऐसा संसार में कोई नहीं बोलता है। यहाँ की हिंदी अलग है, वहां संसार की हिंदी अलग। तो हमको ज्ञान के शब्दों को, कुछ कुछ शब्दों को कन्वर्ट करके उस रीति से बोलना है। तो क्या करेंगे, एक छोटे बच्चे को समझाओ 12 साल के, या तो ऐसे व्यक्ति को जिसे उस टॉपिक के विषय में कुछ भी पता नहीं, ठीक है। फिर चेक करेंगे हमारे समझाने में और कौन सी पॉइंट्स रह गई है, गो बैक और फिर उसको और डीप अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये टेक्निक है, इसको कहते हैं फाइनमैन टेक्निक, ठीक है। फाइन, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है FAYN है, पर प्रोनाउंसिएशन है फाइन, ये MAN मैन, फाइनमैन टेक्निक। दूसरी मुरली पर आ जाओ, भट्टी की अलौकिक छाप, वो सिद्धि वाली कल ले लेंगे, भट्टी की अलौकिक छाप। तो इसमें भी जैसे जैसे मुरली, क्या करना है, एक प्लेन पेपर रख लेना और डायग्राम बनाते जाना। जैसे अभी मुरली पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आज बाबा हर एक के मस्तिष्क पर दो बातें देख रहे, तो दो बातें निकाल लो, एक और दो। क्या दो बातें हैं, एक है भाग्य सुहा, दोनों ही बातें देख रहे, भट्टी में आकर अपने भाग्य और सुहा को अच्छी तरह से देख और जान सकते हो, अपने मस्तक पर चमक तो भाग्य का सितार। तो भाग्य क्या है, यहाँ सितारा बना दो। दो बातें थी, एक भाग्य एक सुहाग, तो भाग्य क्या कर दिया, किससे कंपेयर किया, सितारे से। फिर आगे बढ़ो, भक्ति में दर्पण मिला हुआ है, दर्पण में अपने भाग्य सुहाग, फिर आगे क्या बना दो, एक दर्पण बना दो, दर्पण में अब ये दोनों बातें डाल दो। तो एक दर्पण जिसमें भाग्य और एक सुहाग, भाग्य क्या है, सितारा, गो अहेड। फिर आगे बाबा ने टॉपिक चेंज कर दिया और कहा कि दो बातें और देख रहे हैं। इस मुरली में ऐसा ही है, दो बातें देख रहे, तीन बातें देख रहे, चार बातें देख रहे, ये तीन करोगे तो चार हो जाएगा, चार करोगे तो पांच हो जाएगा, ये ऐसा मुरलियों में आता है, ये बाबा की टेक्निक है। तो यहाँ दो बातें कौन सी देखी, एक तो देखा लाइट का गोला और दूसरा क्या देखा, दर्पण। तो तुमको इस भट्टी से दो बातें मिलेगी, एक लाइट का गोला मिलेगा और दूसरा मिलेगा दर्पण। तो लाइट का गोला अगर तुम यहां बनोगे तो वहां 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 विश्व के राज्य के गोला ले सकते हो। फिर ये यहां हो गया। और इसमें एक ऐसा सामान आया है, हमने इतनी सारी मुरलियां पढ़ी है आज तक, परंतु ये सामान कैसे मिस हो गया हम सोच रहे थे। ये सामान आज तक कभी ना सुना, ना किसी क्लास में सुना, ना देखा। देखो हम सोचते हमने सब पढ़ लिया, पर देखो कितनी कैसा पावरफुल सामान आ गया इसमें। जैसे बाप की महिमा का एक गीत बनाया है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे आप सभी भी मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम हो जाओगे। सुना ये सामान कभी कि मैं अभी तो पता चलेगा क्या क्या छूटा है। मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम, जिस दर्पण में सत्य और असली सुंदरता का साक्षात्कार होगा। फिर ये आगे बड़ी मुरली, फिर आगे फिर मुरली में एक जगह और आया कि तुमको ये, फिर संशय बुद्धि पर है। जो संशय बुद्धि है ना, ये नहीं कह सकते कि हम तो फेल ही होंगे, ऐसा वैसा वो सब वो सारी बातें ना मालूम, ये शब्द कभी नहीं आएगा। और फिर यहाँ पे और तीन बातें हैं जो कभी वरदान था, तोड़ना मोड़ना और जोड़ना। हमें याद है जब ये वरदान आया था, हम उस समय लखनऊ में थे और वो सेंटर पर यही टॉपिक पर क्लास कराया था, उस दिन का ये वरदान था। लोकेशन हमें कैसे याद आया कि सेंटर तोड़ना मोड़ना जोड़ना उस दिन का वरदान था, यही यहां से है वो। तो तुमको तीन बातें याद रखनी है, एक है तोड़ना, क्या तोड़ोगे, कर्म बंधन, जोड़ना संस्कार, तोड़ना जोड़ना और मोड़ना, और अपने संस्कारों को मोड़ना। तो तोड़ना मोड़ना जोड़ना, फिर दो बातें, ये तीन बातें यहां हो गई। फिर उसके बाद में और दो बातें हैं, एक तो परिवर्तन और दूसरा परिपक्वता, ये दो बातें याद रखना। वो कौन सी दो बातें हैं, मुरली में सीधा आता है बाबा, डायरेक्ट पूछते हैं ऐसे कि वो कौन सी दो बातें हैं जो याद रखोगे। तो दो बातें कौन सी, एक परिवर्तन और परिपक्वता। ये हमारे आप नोट्स देखोगे, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये हमारे ऐसे नोट्स होते कुछ भी इसमें मतलब जस्ट रफ रफ लिखा हुआ है। तोड़ना मोड़ना जोड़ना लिख दिया, परिवर्तन परिपक्वता लिख दिया, फिर ना मालूम डाउट लिख दिया, मास्टर SSS ट्रिपल एस। हाँ उस समय का जो लिखा था वो जस्ट अभी ढूंढ के लाया उसको 6-7 साल हो गए। फिर उसके बाद में माताओं से बात की, माताओं को क्या करना है, जो शेर है तुम तो शेर को बकरी बना देना, ऐसे तुम शेर नहीं बन जाओ। जो संसार के लोग हैं जो समझते हैं हम शेर हैं, वो तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे, तो शेर और बकरी। फिर आगे और एक चीज है, स्वतंत्रता और प्रबंध, अपने आप को स्वतंत्र बनना है उसके लिए प्रबंध करो, ठीक है। तो ये हो गई मुरली पूरी मुरली पूरी हो गई। तो इतने यही है उसमें, हमको कीवर्ड्स पकड़ लेना है, ये चीज आ रहा, तोड़ना मोड़ना जोड़ना आ गया, परिवर्तन परिपक्वता आ गया, लाइट का गोला और दूसरा एक दर्पण आ गया, फिर उसके बाद में वो डाउट वाला आ गया, संशय बुद्धि नहीं होना चाहिए, संशय बुद्धि होगा ना मालूम शब्द नहीं आना चाहिए, पता नहीं मेरा क्या होगा, सफल हो गया जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता तिलक लगा हुआ, ये सब अंदर का तो हमको पता ही है। भाग्य और सुहाग का आ गया, तो उसके बाद जादूगर, ऐसी जादूगर नहीं बन जाओ, ऐसी शेर नहीं बन जाओ, ये सब उसमें है। तो दीज आर द टेक्निक्स। तो अब ये हमने पढ़ लिया, अब हमको ये समझाना है किसको, एक भोली भाली माता है अनपढ़, उसको ये समझाना है कि तुमको क्या करना है, जो शेर समझते हैं उनको बकरी बनाना है तो उसको हमको थोड़ी सी चिंतन करना पड़ेगा, प्लानिंग करने पड़ेगी माइंड में कि सामने जो व्यक्ति आज आने वाला है उसको कैसे समझाए। जैसे कोई एक स्टूडेंट आ रहा है जो 12th स्टैंडर्ड में है, उसको आज समझाना है तो कैसे समझाएंगे। गांव का व्यक्ति आ रहा है उसको कैसे समझाएंगे। एक IAS ऑफिसर आ रहा है उसको कैसे समझाएंगे। अभी हम जो एक ट्रेनिंग करने गए थे मेडिकल की, वो दो लोग थे समझाने वाले, पर दोनों ही डॉक्टर नहीं थे, दोनों ही डॉक्टर नहीं थे, पर वो उसमें से एक 26 साल का था, वो कहता है मैं 7 साल से ये ट्रेनिंग करा रहा हूं सबको। पहले बहुत डर लगता था, और डॉक्टरों को ये करना ही पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है, वो बच नहीं सकते, उनको हॉस्पिटल को अगर चलाना है वो हॉस्पिटल में ये जरूरी है करना डिस्कोर्स। तो वो कहता है कि मैं जब पहली बार कराने लगा तो मेरे सामने सारे एचओडी बैठे थे, एनेस्थीसिया का एचओडी, कार्डियोलॉजी का एचओडी। अब कार्डियोलॉजी के एचओडी को ईसीजी सिखाना और कौन सिखा रहा है, जो डॉक्टर ही नहीं है, पर वो अपने स्किल में इतना परफेक्ट है, इतना परफेक्ट है कि वो कहता है कि धीरे धीरे मेरे को एक दिन अभी कोई भी बैठ जाए मेरे सामने मुझे डर नहीं लगता समझाने में सिखाने में, क्योंकि ये टेक्निक का मैं मास्टर हूं। भले तुम लोग पेशेंट देखते हो डायरेक्ट करते हो पर मुझे पता है क्या क्या करना चाहिए। मैं तुमको ये नहीं सिखा रहा हूं कि पेशेंट कैसे देखना है पर टेक्निक क्या है वो मैं तुमको सिखाता हूं। और वो खुद इतना कॉन्फिडेंट, दोनों भी इतने पावरफुल कि बैठे वाले जितने लोग आए थे सब कोई आईसीयू का इंचार्ज, कोई कहां का इंचार्ज, कोई वो सब लोग बैठे हुए थे, और उनकी उम्र 26 और 31 और ऑडियंस में बैठे वाले थे 40 50 60 एक 70 साल का भी था, पर उनके फेस में जरा भी भय नहीं, क्योंकि तुम उसमें मास्टर हो ना। तो जिसमें तुम मास्टर हो तुमको डरने की आवश्यकता नहीं। बाबा ने कहा सृष्टि की नॉलेज पढ़ ली उसमें सब आ गया, भले तुम्हारे सामने प्रेसिडेंट आके बैठ जाओ फिर ये कॉन्शियसनेस हटा दो कि ये प्रेसिडेंट है इसको कैसे मैं कैसे समझाऊं इसको ज्ञान, तुम अथॉरिटी हो, कोई भी आ जाए सामने फिर उसके पास ये ज्ञान नहीं है जो तुम्हारे पास है। इसलिए ये तो समझना ही नहीं अपने आप को, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं मैं कैसे समझाऊं वगैरह वगैरह, डरना ही नहीं है बिल्कुल। जो सुनाया था ना ज्ञान सरोवर में, सब जानते हैं, वो आईएएस ऑफिसर नहीं कौन आए थे, बहुत बड़े कलेक्टर थे, सारी प्रदर्शनी समझी वो कलेक्टर साहब ने ज्ञान सरोवर की, और फिर वो प्रश्न पूछने लगा, वो माता जिसने उसको समझा ऐसा ऊपर से मतलब दिखने में तो बहुत बड़े आदमी दिखते, वो इतना भी नहीं समझता है भगवान समझा रहे ऐसा तीर लगा उसको खतरनाक, जाके कोर्स किया फिर ज्ञान में आ गया। वैसे ज्ञान में नहीं आता था, इतने बड़े बड़े लेक्चर्स हुए, किसी के लेक्चर्स इधर से सुन के इधर से चले गए। तो ये दो मुरलियां हो गई, ठीक है। अब आते हैं मर्यादाओं की तरफ, आज कोई प्रश्न उत्तर नहीं है इसलिए रिलैक्स, क्लास खाली हो रहा है नहीं तो। कितने भेज रहे, 5 मिनट के बाद देखो तो 200 मैसेज, अगले 5 मिनट के बाद देखो तो और 300 मैसेज नॉन स्टॉप, पर मानना पड़ेगा सबके उम्र गुस्सा को, क्योंकि ये पूरी अव्यक्त मुरली 4 पेज की, रोज नई मुरली पढ़ना 5 पेज की पढ़ना, याद रखना, होमवर्क करना, क्वेश्चन के आंसर देना, बड़ी बात है। होमवर्क नंबर 1, ये दोनों मुरलियों को आज पढ़ना है इस टेक्निक से, और हो सके अगर कोई मिल जाए बच्चा तो उसको समझा भी देना, तेज तो उस बच्चे को समझा देना, या तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको कुछ पता ही नहीं है इस ज्ञान के बारे में। जैसे किसी का फोन आया, हमारा कोई पुराना दोस्त, उसको बोला हमने एक जगह पढ़ा है कि अगर ऐसी अच्छी आदत ही नहीं होगी ना अदालत में जाना पड़ेगा, ऐसे समझा देना उसको, ठीक है ना। हाँ, और फिर समझा देना सिंप्लिसिटी प्यूरिटी, ये कुछ भी समझाओ, हमने कहीं पढ़ा है, क्या कहेंगे हमने एक जगह सुना है, ऐसे बना देना। तो ये मुरली को कैसी भी तरह से रिवाइज करनी है, बस रिवाइज करने की आज की टेक्निक क्या है, दूसरों को बताना है इनडायरेक्टली डायरेक्टली कैसे भी करके, हाँ इंटरेस्ट के साथ। तो ये एक हो गया, एक दूसरा है आज का होमवर्क, जो 25 लोकेशन है वो बहुत दिनों से रिवाइज नहीं किए है, तो आज की साकार मुरली 25 लोकेशन के आधार पर रिवाइज करनी है। लोकेशन 1 शांति स्तंभ, महावाक्य, हिस्ट्री हॉल, हिस्ट्री हॉल में क्या प्रश्न उत्तर, बाबा का कमरा, धारणा के लिए सार 1, कुटिया धारणा के लिए सार 2, वरदान आंगन, रिसेप्शन यहां पर क्या स्लोगन, ओम शांति भवन में कोई गीत, फिर 6 सोमान, मुरली से 6 सोमान निकालने हैं। पहला सोमान डालेंगे बाबा के कमरे में, फिर लाइब्रेरी में, फिर मेडिटेशन हॉल में, फिर डिस्पेंसरी में, फिर डाइनिंग में, और फिर भंडारे में। फिर हॉस्पिटल में क्या डालेंगे, मुरली में नए व्यक्ति और स्थान। फिर म्यूजियम में क्या डालेंगे, ड्रामा की पॉइंट, पीस पार्क में क्या, ज्ञान सरोवर में इंग्लिश के शब्द, पीस पार्क में सर की पॉइंट्स, आगे शांतिवन में मायाजीत बनने की सारी पॉइंट्स, मनमोहिनी में नए शब्द, और मानसरोवर में कहावतें मुहावरे, उसके बाद में यूरोप में सेवा की पॉइंट्स, अमेरिका में दिव्य गुणों की पॉइंट, अफ्रीका में शक्ति की पॉइंट, एशिया में भोजन संबंधित पॉइंट, और ऑस्ट्रेलिया में बाबा के भिन्न भिन्न टाइटल्स। तो ये 25 लोकेशंस के आधार पर आज की मुरली रिवाइज करेंगे और लिखेंगे, वो उसमें डालेंगे होमवर्क में। ये होमवर्क नंबर टू। होमवर्क नंबर थ्री मर्यादा है, तो चलो मर्यादा की तरफ चलते ब्रेक। सबसे पहले ए फॉर अमृत वेला, ये मर्यादाएं हैं सेंटर की, 26 मर्यादाएं सेंटर स्टूडेंट्स के लिए, यज्ञ की तरफ से मर्यादा है, जो अमृत वेला करना कंपलसरी है 4 to 4:45, ये है ऑफिशियल टाइमिंग, इसको मिस कभी भी नहीं करना है किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान में। ऐसा नहीं हम ट्रेवल कर रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था, ऐसा हो रहा था, हो गया, लेट हो गया सोने के लिए, कितना भी लेट हो जाए, चाहे 3 ही क्यों ना बज जाए, अमृत वेला करो फिर सो जाना, बोले सेवा करते करते अगर 3 बज जाए, 3:30 बज जाए, कम से कम आधा घंटा तो करो और फिर सो जाओ। तो अमृत वेला किसी भी परिस्थिति में मिस न हो, ये क्या है, श्रीमत है, ये है मर्यादा, श्रीमत भी नहीं मर्यादा। मर्यादा मतलब उसको अगर तोड़ा, उस नियम को तोड़ा, लॉ को तोड़ा, तो अदालत में जाना पड़ेगा। लॉ को अगर तोड़ा तो सजा मिलेगी, पनिशमेंट, दंड मिलेगा, पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होगी, दिन भर उदासी। पनिशमेंट क्या होगी, दिन भर व्यर्थ। पनिशमेंट क्या होगी, दिन भर अच्छा नहीं लगेगा, दिल खाते रहेगा, गिल्ट कॉन्शियसनेस रहेगा, अमृत वेला मिस हो गया, अमृत वेला मिस हो गया, अमृत वेला मिस हो गया, असंतुष्टता रहेगी, अच्छा नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ ऐसा अंदर दिल खाते रहेगी, भारीपन रहेगा एक कि क्यों मिस हो गया। और हम देखेंगे कारणों को, तो कारण अपना ही कारण है, सेवा का कारण है ही नहीं, अपनी ही कमजोरी है। क्यों लेट, हम सो सकते थे फिर भी जानबूझ के लेट कर दिया, या तो मोबाइल का कारण हो सकता है, कोई रियल कारण भी होते कई बार, पर उसमें फिर ऐसे करो, जैसे हम लोगों को कई बार रात भर इमरजेंसी चलती रहती है, पेशेंट आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते रहते हैं, कोई ना कोई, कोई ना कोई, कोई ना कोई, अभी कुछ बार करते करते 3 बज जाते। अभी ऐसा है अगर 3 बजे सोए, मतलब सोचो अमृत वेला तो गया, मतलब अभी सीधा 6 बजे या 7 बजे नींद खुलेगी, इसलिए बेटर है कि थोड़ा कर लो और फिर सो जाओ भले। हाँ, क्योंकि सारे दिन भर छुट्टी तो है नहीं, सारे दिन भर की अपनी सेवाएं है, और जो सेवा लेने आने वाले हैं, जो उनको तो ये पता ही नहीं ना कि रात भर ये क्या कर रहे थे, वो तो यही देखते हैं ना कितना क्या कैसे थे या नहीं थे, उनको तो पता ही नहीं रात पूरी चली गई 1 या 2 पेशेंट्स के पीछे। तो सबसे पहला है अमृत वेला, कोई भी कारण नहीं चलेगा। इन 26 के 26 मर्यादाओं में एक भी मर्यादा टूटनी नहीं चाहिए, उसका कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। एक्सक्यूज अगर है तो फिर, अगर होगा तो दंड मिलेगा, ठीक है। धर्मराज के दंडे कौन से है, ये जो गायन है ये कौन सा है, स्थिति का गिर जाना ही दंड है, खुशी गायब हो जाना ही दंड है, कोई धर्मराज नहीं बैठा है दंडा लेके वहां पे, खुशी का गुम हो जाना दंड है, मुरली में इंटरेस्ट खत्म हो जाना दंड है, संसार का आकर्षण बढ़ जाना दंड है, शरीर का आकर्षण बढ़ जाना दंड है, व्यर्थ आ जाना दंड है, निगेटिव आ जाना दंड है, यही दंड है, मार्ग से भटक जाना दंड है। दूसरा ब्रह्मचर्य, बी फॉर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, मनसा वाचा कर्मना स्वप्न संकल्प संबंध संपर्क में ब्रह्मचर्य खंडित ना हो। और इसको तोड़ने का, इस ये जो टूटता है इसका सूक्ष्म कारण वर्तमान में है वीडियोस, ऑनलाइन वीडियोस, एडवर्टाइजमेंट्स, रील्स, शॉर्ट्स, एडवर्टाइज, न्यूडिटी, वल्गैरिटी, ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये क्या कर दिए, ये मन में अंदर घुस जाती है, डीसेक्सुअलाइज्ड ब्रेन, डीसेक्सुअलाइज्ड ब्रेन। ब्रेन में क्या करता है ये, और फिर ये जो घुसता है, जैसे व्यक्ति कुछ खाता है तो डोपामिन रिलीज होता है, डोपामिन एक केमिकल है जो रिलीज होता है और खुशी, तन बंधन में खुशी होती है। फिर जब मेडिटेशन करता है, एक्सरसाइज करता है तो भी वो रिलीज होता है। जब काम विकार में जाता है उसकी यहां पे होता है रिलीज वो 100%, यहां होता है 200 और काम विकार में 300% सबसे ज्यादा। इसलिए डोपामिन का एडिक्शन हो जाता है। वो एडिक्शन उस शरीर का नहीं है, उस शरीर के संपर्क में आने से शरीर में जो केमिकल्स निकलते हैं और उसके तन बदन में सुखद संवेदनाएं जागती है, उस सुखद संवेदना के प्रति ये जो एडिक्शन है 300% है। स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको ये हो सकता है 250% है, भोजन का हो सकता है 100% है, इसलिए वो खाने की इच्छा होती है। एक दिन पूरा जूस पर रहो, एक दिन फ्रूट पर रहो, अगले दिन कुक्ड खाने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि कुक्ड से वो केमिकल्स रिलीज होते हैं, इसलिए उसके लिए एडिक्शन है। तो ये जो है ये कहां से निकलता है? ये सारे चित्रों से, पिक्चर्स, न्यूड पिक्चर्स, न्यूड वीडियोस। ये 5 मिनट देखा और 24-23 घंटे ब्रह्मचर्य का पालन किया तो ये जो है ये सीधा सबकॉन्शियस, क्योंकि ये भाषा कौन सी है? पिक्चर्स की भाषा है। ब्रेन को टेक्स्ट तो समझ नहीं आता है, अभी जो मुरली पड़ी गया, क्योंकि पिक्चर तो बनाया नहीं, स्टोरी तो बनी नहीं। और ये जो वीडियोस है सीधा पिक्चर है, और क्या है? मूविंग है, एक्शन है, उसमें कलर्स है, वो सारे इंग्रेडिएंट्स है जो ब्रेन को पसंद है। ब्रेन को वो सारी चीजें पसंद है और वो देखते ही क्या होता है, ब्रेन में तन बदन में सुखद संवेदनाएं जागती और वो संवेदनाओं के प्रति आकर्षण हो जाता है। फिर वो समझ में आता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी परवश, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और विड्रॉल सिम्टम्स, वो अगर नहीं मिले तो पागल होता है व्यक्ति। जैसे अब भी हॉस्पिटल में एक पेशेंट हमारा एडमिट है, इतना पीता है वार्ड में एडमिट किया, पर परसों से उसको, जब से 2 दिन से वार्ड में है तो पीने को मिला ही नहीं, वायलेंट हो गया। कल फिर रात में आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा उसको, इतना वायलेंट हो गया, फाड़ रहा है सब कुछ, इतना हेवी डोज के इंजेक्शन जा रहे हैं उसको, फिर भी एसिडिटी नहीं हो रहा है। विड्रॉल वो चाहिए, 2 दिन से नहीं मिला ना, तो तलब उठती है, तलब, भयंकर तलब। और कल रात को फिर उसका दोस्त एडमिट हो गया वो भी पीने वाला उसी कंडीशन में, वो तो आईसीयू में था ही, पहले वार्ड में था फिर आईसीयू में, अब कल रात में उसका दोस्त भी आ गया। ये क्योंकि यहां, इसलिए उस दिन क्या कहा था, ज्ञान अर्थात सूचना नहीं, ज्ञान अर्थात सूचना प्लस अनुभव, और अनुभव कैसा हो, शरीर पर व्यक्त हो तो वो मेमोरी बनता है। शरीर पर आना चाहिए अनुभव। जैसे किसी ने एक बंदूक दिखा दी, कैसे डर और पसीना आ जाता है, ये भूलेगा? और डर के बारे में पढ़ो तो मैं, एक व्यक्ति सामने बंदूक दिखाता है हमको थोड़ी नहीं दिखाता है, वो किसी और को दिखाता होगा। शाहजहां ने ताजमहल मांगा, मुझे क्या लेना देना है, ताजमहल ने किया, हम इन्वॉल्व ही नहीं है ना उसमें। तो इस तरह से तो क्या होना चाहिए, अनुभव शरीर पर आना चाहिए, बाबा के प्यार का अनुभव। आंसू जब आ जाए ना तो वो अनुभव, पूरे रोमांच खड़े हो जाएंगे तो वो अनुभव, शरीर पर उतरना चाहिए, दिखना चाहिए तो वो मानेंगे, तो वो सीधा सबकॉन्शियस में जाता है। तो दूसरा है ब्रह्मचर्य, तीसरा है सेंटर का वातावरण। सेंटर का वातावरण दूषित नहीं करना है, वहां जाकर झरमोई झगमोई, पॉलिटिक्स की बातें, यहाँ की बातें, वहां की बातें, क्रिकेट की बातें, स्पोर्ट्स की बातें, इधर उधर की बातें करते रहते, मुरली पूरी हो गई, बैठ गए चेयर लेके 2-4 लोग हॉल में और इधर उधर की बातें चालू किया। तो सेंटर की मर्यादा क्या है, ये सेंटर के स्टूडेंट्स की मर्यादा है। सेंटर के वातावरण को दूषित नहीं करना है, सेंटर का वायुमंडल स्वच्छ रखना है, क्लीनलीनेस। डी, ड्रेस कोड, व्हाइट ड्रेस और बैच एक, ये तो आइडियल है, पर जरूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूस व्हाइट ही पहनो, क्योंकि लोगों को नौकरी पर जाना पड़ता है, ड्यूटी पर जाना पड़ता है, तो उसमें 2-3 मर्यादा है, भड़कीला ना हो। दूसरा, ट्रांसपेरेंट ना हो कपड़े, पारदर्शी। तीसरा, टाइट ना हो। तीसरा, ऐसा ना हो कि शरीर के अंग दिखे, ढीले हो, टाइट ना हो, ढीले हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, भड़कीले ना हो, कोई को आकर्षण करने वाले ना हो, डार्क कलर, वो सब चीजें ना हो। तो ये है ड्रेस कोड, और हो सके तो व्हाइट और लाइट, सिंपल हो, एकदम सिंपल, सोबर कलर हो। और ऐसे भी ना हो कि कोई आके पूछे कहां से लिया, मतलब दूसरों को देखकर ही उदासी छा जाए कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी शॉल इतनी बढ़िया दिखती है, हमारे तो वही शॉल चल रही है 10 साल से, कोई पूछता भी नहीं। कहां से लाते हो ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी चीजें? हाँ, संस्कृति के अनुरूप हो, ठीक है ना। ये हो गया तीसरे। चौथा ABCD ई एक्सचेंज ऑफ मनी। सेंटर पर ये जो पैसों की लेन देन है ना एक दूसरे से, ये जितना हो सके बिल्कुल भी ना हो। पैसों की लेन देन, उसको पैसे दिए, उसको पैसे दिए, इधर से पैसे, उधर से पैसे। हाँ, वो सेवा अर्थ हो रहा है वो अलग, हम बात कौन सी कर रहे हैं, पैसों के अफेयर्स, मनी अफेयर्स, ये लेन देन ना हो सेंटरों पर, एक्सचेंज ई। उसके बाद में एफ फूड। फूड के बारे में सारी मर्यादा है हम जानते हैं, प्याज लहसुन नॉनवेज ये सारी जो चीजें है बाहर का, और फिर उसके बाद में मशीन मेड चीजें, और धीरे धीरे सात्विक आहार की सर्च में निकलना है। कि ये तो बाबा ने इनिशियल स्टेजेस बताई है जनरल पब्लिक के लिए, पर वहीं थोड़ी ना रुकता है वो, तो और आगे जाओ और आगे आगे जाओ, फिर वीगनिज्म आता है उसमें, फिर और आगे जाओ, क्योंकि दूध में भयंकर हिंसा समाई हुई है। आप एक बछड़े से छीन रहे हो उसका अधिकार, उसकी बद्दुआएं लगती है, उसके उसका दर्द, उसकी पीड़ा, उसके आंसू, और जब इतना हिंसा अंदर है तो कभी भी वो कंपैशन का भाव जागृत नहीं होगा हमारे अंदर। इसके लिए एनिमल प्रोडक्ट जितने, चाहे बेल्ट पहन रहे, पर्स है, कुछ भी हो, मोबाइल का कवर, कुछ भी, एनीथिंग विच इज लेदर, एनीथिंग विच इज मिल्क, एनीथिंग विच इज मिल्क, एनीथिंग हनी, ये हनी, हनी में भी भयंकर हिंसा समाई हुई। ये सारा जो कुछ मिल्क रिलेटेड है वर्तमान समय, वो माँ का दूध करके एक डॉक्यूमेंट्री है 2-2.5 घंटे की, वो देख लेना एक बार। हिंदी में है, इंग्लिश में है, गुजराती में, 3 भाषाओं में, माँ का दूध मराठी में भी है, तो वो एक बार देख लेना। वो वर्तमान समय जो मिल्क इंडस्ट्री है, बहुत मतलब बहुत, आपको अगर किसी भी बीमारी से ठीक होना है, जब तक दूध को नहीं छोड़ेंगे उससे भूल ही जाओ, क्योंकि निगेटिव कर्म हो रहे हैं वहां पर। अगला तो ये हो गया फूड, और फूड के आहार जाते 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 आप इतना आगे जाओ कि फिर धीरे धीरे आपको समझेगा कि कुक्ड में भी बहुत हिंसा है। जितना भी पकाया हुआ भोजन है वो कभी भी हमको स्वस्थ नहीं कर सकता। हमारा स्वभाव है, देवता अगर बनना है तो हमें वही खाना है जो देवता खाते थे। धीरे 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 वो सारा कुक्ड फूड, वो सारा नमक, सबसे बड़ा, सारा संसार नमक का गुलाम है, सारा विश्व के विश्व नमक का गुलाम है, और वो सबसे बड़ा जहर है। सॉल्ट, कोई भी नमक सेंधा, सॉल्ट, सॉल्ट रॉक है, रॉक पत्थर है, हम पत्थर खाने के लिए बने नहीं। नमक, तेल, आग पर चढ़ाई हुई सारी चीजें हमारे खाने के लिए, एक ही चीज है जो कर्मलेस है, जो हमारे लिए बना हुआ है। हमारा शरीर केवल और केवल फल खाने के लिए डिजाइन है, कुछ भी और खाने के लिए वो डिजाइन नहीं है, केवल फल। क्योंकि फल तो हमको झाड़ दे रहा है, झाड़ कहता है तुम इसको खाओ और उसके बीज को बिखराओ। इवन सब्जियां और ये सारी जो चीजें हैं उसको पकाना पड़ता है, उसमें तेल डालना पड़ता है, उसमें नमक डालना पड़ता है, मसाले डालने पड़ते हैं। ये नमक, तेल, मसाला सारे चोर है जो हमारे स्वास्थ्य को खत्म कर देते। सोलार वो जो भी है, परंतु हमें वो लेना है जो प्राकृतिक है, नेचुरल है, रीजनल है, सीजनल, जो उस सीजन के फल है। फल खाओ, दिन भर फल खाते रहो, 2-2 घंटे में खाओ। पर हम जो कुछ खा रहे हैं, ये सारा पका हुआ रोटी सब्जी दाल चावल, ये केवल हमें एक ही चीज दे रहा है, बीमारी। इस संसार का सबसे बड़ा कारण है बीमारियों का अनाज। आलू हमारा भोजन ही नहीं है। फूड, फूड के बाद में आगे बढ़ो एफ जी। जी अर्थात गिव, 3 बातें देनी है, एक दुआएं देनी है, शुभ भावनाएं देनी है, और सुख, सुख देना। ये 3 चीजें, आत्माओं को सुख देना, दुआएं देना, शुभ भावनाएं देना। जी, उसके बाद में एच, एच फॉर होली कंपनी। होली कंपनी अर्थात सत्संग, सत्य का संग करना या सत्संग करना। उसके लिए रोज सेंटर जाना पड़ेगा, ब्राह्मणों का संग करना पड़ेगा, पवित्र आत्माओं का संग करना पड़ेगा। जैसे ही कुसंग में गए तो समझो, इवन ब्राह्मणों के परिवार में भी जो तीव्र पुरुषार्थी है केवल उन्हीं का संग करो। जो ढीले पुरुषार्थी है उनका संग अगर कर दिया तो गए काम से, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हमारी दुनिया केवल घूमना फिरना और भोजन, साइट सीइंग और भोजन, ये आधे से ज्यादा ब्राह्मणों का यही जीवन है। भोजन में क्या बना है और कहाँ घूमने जाना है, इधर जाऊं उधर जाऊं, इसको देखूं उसको देखूं, क्या देखना है। ब्रह्मा बाबा कहीं पर भी गए नहीं पिछले लास्ट कुछ सालों में, तो 6 साल में ये बाउंड्री को भी क्रॉस नहीं किया कहीं। ऐसे कई सारे लोग, देखना है तो सेवा अर्थ जाओ भले, बस बाकी घूमना फिरना ये सब टाइम वेस्ट है, प्योर टाइम वेस्ट। नेक्स्ट है, कितना हो गया जी, एच आई, आई अर्थात इनकल्केशन ऑफ वर्च्यू, दिव्य गुणों की धारणा करना, ये यज्ञ की मर्यादा है। आई जे, जे जर्नी टू मधुबन, मधुबन की यात्रा करते समय सेंटर के थ्रू जाना है, ऐसे नहीं मैं तो जानता हूं उस भाई को उसके कमरे में रह लूंगा, हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई सेवा देने की जरूरत नहीं, हमारी बहुत पहचान है मधुबन में, सब हमको जानते हैं, ऐसा जाओगे ना तो मनोभाव भी कुछ भी नहीं होगा, इल्लीगल। तो जर्नी टू मधुबन हमारी लीगल होनी चाहिए, सेंटर के थ्रू होनी चाहिए, बहन जी के थ्रू होनी चाहिए जी। उसके बाद में कीपिंग चार्ट, रोज का अपना चार्ट रखना है के। उसके बाद में एल, लव फॉर वन बाबा, एक बाप के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। एल एम, एम फॉर मुरली क्लास, मुरली क्लास ट्रेन में सुन लिया, गाड़ी में सुन लिया, बस में सुन लिया, चलते फिरते सुन लिया, नहीं, सेंटर पर जाकर ही मुरली सुननी है, ये नियम है, ये मर्यादा है, क्योंकि वहां के वायुमंडल बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है। एम एन, एन फॉर नो की एक लिस्ट बनानी है, कौन सी लिस्ट है नो की, एक तो नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, नो गैम्बलिंग, नो करप्शन, जुआ नहीं, स्मोकिंग नहीं, अल्कोहल नहीं, ये सारी चीजें उसमें आती है नो में। और नो की लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है, आप उसको नो मूवीज, नो ट्रेलर्स, सब कुछ, इवन लॉटरी, ये लॉटरी खरीदना, बाप से कहते हैं बाबा हम लॉटरी खरीदते हैं ना फिर आपके यज्ञ की सेवा करेंगे, शेयर मार्केट, यहां कितना चला था वो लक्ष्य इंडिया का, सब सब ब्राह्मण भी उसकी चपेट में आ गए थे, चेन मार्केट है वो, बाबा ने उसके ऊपर फिर मुरली भी चलाई थी, वो तो सबसे बड़ी, मुझे, हम उस समय मुंबई में थे, यहां जब आए एक यज्ञ के बहुत सीनियर ने हमको समझाया था कि देखो ना हमारी बहनों के पास पैसा भी नहीं रहता है तो ये तो करना चाहिए, कितनी अच्छी बाबा की ये सेवा होगी, आप भी करो, हमको तो डर गए ये क्या है, हम भाग गए नहीं किया। तो हमको भी बड़े बड़े इसके इसमें थे लक्ष्य इंडिया, ये सारे जो थे ना ये सब गैम्बलिंग है। बाय द स्वेट ऑफ thy ब्रो thou shalt earn thy ब्रेड, पसीना पसीने मेहनत से पैसा कमाओ। ओम शांति।
बड़े प्यार से उस मेरे नदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो भर